अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला जो तदबीर करता है ये तो सोच भी नहीं सकते उसको। इस कॉल अल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया याद करो, इसका मतलब होता है याद करो, याद करो कि जब अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम से, ए ईसा इन्नी मुतवफी का, मैं तुम्हें पूरा का पूरा लेने वाला हूं तुझको। मुतवफी का एक माना होता है नींद दे देना, तो अगर वो माना ले तो यानी नींद आपको तारी कर दी जाएगी और आपको उठा लिया जाएगा। नंबर टू माना होता है मौत दे देना फौत करने से, जो माना यहां पे नहीं बनता, इसलिए क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को आगे बताया गया, आगे आप देख लेंगे, आगे आ जाएगा भी। और सूरह जुखरुफ में भी अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम एक निशानी है अल्लाह की, जो कयामत से पहले ये निशानी जाहिर होगी, उससे भी हमें पता चलता है कि वो उनको मौत नहीं आई। जिसको एक दफा मौत आ जाए वो तो दोबारा नहीं, अल्लाह का कानून नहीं कि वो दोबारा तो अल्लाह ताला उसको जिंदा करे, तो उनको मौत नहीं आई, वो जिंदा हैं और वो आएंगे। आयत नंबर 61 है सूरह ज़ुख़रुफ़ की, तो उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि बाज लोग आज इस चीज को डिनाई करते हैं, हालांकि मुतवातिर तवातुर के साथ अहादीस है, इतनी अहादीस है बुखारी में मुस्लिम में, और इतनी ज्यादा है, तवातुर से हदीस का मतलब होता है इतनी अहादीस है कि उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, उनको कोई वो नहीं, इनकार नहीं उनसे कर सकता, इतनी अहादीस है ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने की। तो फरमाया कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा लेने वाला, और अब तीसरा माना जो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा उठा लेना, तो ये तीन माने हैं, यानी मैं तुम्हें उठा लूंगा। और हुआ यही कि जब वो आए लोग, तो एक बंदे ने, आगे भी हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल पढ़ेंगे, बताया गया कि एक हवारियों में से था जिसने के खयानत की थी, और उसने जाके उनको बताया कि यहाँ पे है ईसा अलैहिस्सलाम। तो जब वो लेकर आया तो ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत डाल दी अल्लाह ताला ने उसी के चेहरे के ऊपर, और वो उसको ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह बना दिया। और लोगों ने कहा उनको, उसको ईसा समझ के जो हवारी थे उन्होंने कहा ये ईसा है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो उठा लिया, और सिपाहियों ने उसी को पकड़ लिया और उसको सूरी पे चढ़ा दिया, क्योंकि उसका शक्ल जो थी उसकी वो ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बन गई थी। जब उन्होंने सूली से उतारा देखा कि बदन तो सारा ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नहीं और शक्ल उनके जैसी ही हो गई है। बाहर क्या वराफियों का इलैया, उठा लेने वाला हूं तुझको, बुलंद करने वाला हूं तुझको। अगर ये कोई ऐसी बात ना होती और ये फौत करना ही होता तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, फौत तो सारे ही होते हैं, उठाए तो सारे ही जाते हैं, सबकी रूहें ऊपर जाती हैं, लेकिन यही मोजजाना ही इनकी पैदाइश थी। और ये भी एक बहुत बड़ा मोजा अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने उनको जिस्म के साथ उठाया, वो मुताहिरु का मिनल्लजीना कफरु, और हम मैं पाक कर देने वाला हूँ तुझको उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, यानी कुफर वाले लोगों ने जो भी इल्जाम लगाए इनके ऊपर, जो भी इनको पर बोहतान बाजियां की, मैंने आपको बताया कि कितनी बोहतान इनके ऊपर लगाए गए, उन सब से आपको पाक कर लूंगा, दुश्मनों की चालों से भी, उनकी तुहमतों से भी। वह जाहिलुल्लज़ीना तबाउ का फौक अल्लज़ीना कफरू, और मैं बनाने वाला उन लोगों को जिन्होंने आपकी पैरवी की, फौक अल्लज़ीना कफरू उन पर जिन्होंने आपका कुफर किया, आपका इनकार किया, और जिन्होंने आपकी पैरवी की हवारियों ने, हवारियों को मैं उनके ऊपर कर दूंगा, गलबा दे दूंगा जिन्होंने कुफर किया। तो जब तक फिर नसारा सही दीन पर रहे उस वक्त तक उनका गलबा ही रहा यहूद के ऊपर, फिर और आज भी दुनिया में देखें जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, चाहे वो ईसाई हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो ऊपर हैं उनसे जो उनका कुफर करने वाले हैं, और कुफर करने वाले यहूद हैं। इला यौमिल कियामा, कयामत के दिन तक उनको ऊपर रखूंगा जो आपका इत्तेबा करने वाले हैं, कितना बड़ा इनको ऑनर दिया गया। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी तरफ ही तुमको लौटना है। فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, तो फिर मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान उसमें जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे, यानी किसने इख्तलाफ किया, इनकी पैदाइश में इख्तलाफ, किसी ने नऊज़ बिल्ला वलदु ज़िना कहा, किसी ने अल्लाह का बेटा कह दिया, किसी ने कहा इनको सूली चढ़ाया गया, किसी ने कहा नहीं चढ़ाया गया, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, तो जितने इख्तलाफात इनके बारे में है ना, किसी ने कहा तीन में तीसरा है उदा बेटा और मरियम, तीन में से तीसरा है, जितने इख्तलाफात थे सबका अल्लाह ताला फैसला कर देगा कयामत के दिन। और इनके बारे में आता है ना कि ये उतरेंगे कयामत के करीब, आसमान से उतरेंगे। ये हदीस है मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, अल्लाह की कसम ईसा बिन मरियम आसमान से उतरेंगे, हुकूमत करेंगे, अदलो इंसाफ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, जिजिया नहीं लेंगे और जवान ऊंट को छोड़ देंगे, उस पर कोई मेहनत नहीं करेगा, यानी उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा, लोगों के दिलों से कीना बोझ और हसद जाता रहेगा, और ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को माल देने के लिए बुलाएंगे लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी इतनी खुशहाली आ जाएगी, इतना अच्छा वक्त आ जाएगा। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। जो लोग इसका इनकार करते हैं वो कुरान की सूरह ज़ुख़रुफ़ की भी इस आयत का इनकार करते हैं जो मैंने आपको बताई 61 नंबर, और तवातुर के साथ जो अहादीस आई हैं उनका भी इनकार करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन ये तक फरमाया कि ईसा बिन मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, 45 साल तक 45 ईयर्स तक जिंदा रहेंगे, फिर फौत होंगे और मेरी कब्र के साथ ही दफन होंगे। मैं और ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के दिन इकट्ठे अबू बकर सिद्दीक और उमर के दरमियान से उठेंगे, और आज भी वहां पे जगह है, हजरत ईसा अलैहि सलाम की कब्र की जगह है मौजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास, जहां पे ईसा अलैहि सलाम को दफनाया जाएगा। तो फिर इस चीज का इनकार कर देना और ये करना तो सरीहन इन सारी आयात इस आयत का भी और सारी हदीसों का भी इनकार करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा बिन मरियम रोहा की घाटी से हज या उमरा या हज किरान के लिए लब्बई कहेंगे। ये भी मुस्लिम ने रिवायत की, यानी जब आएंगे तो हज भी करने जाएंगे, उमरा भी करने जाएंगे। तो इतनी वाज़े अहादीस हैं इस बारे में, और यही आके दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, यानी ये ईसा अलैहि सलाम ही सिर्फ दज्जाल को कत्ल कर सकेंगे और कोई दज्जाल को कत्ल नहीं कर सकेगा, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम की आमद है बरहक है ये बात, और ईसा अलैहि सलाम उतरेंगे, और हदीस में ये भी बताया गया है दमिश्क में उतरेंगे, ये भी बताया गया है कि कौन सा वक्त होगा जिस वक्त ईसा अलैहि सलाम उतरेंगे, कोई उस वक्त इमाम मेहदी इमामत के लिए खड़े होंगे और इस वक्त ईसा अलैहि सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फरिश्तों के साथ उनके परों पे हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। ये सब बातें आती हैं अहादीस के अंदर। अभी हम इख्तिसार की वजह से सारी अहादीस नहीं देख सकते, वरना मैं आपको हदीसें बताऊं कि इनकी, लेकिन ये बात हमारा ईमान है कि ईसा अलैहि सलाम ने आना है। और कादियानियों ने ये कह दिया कि मिर्जा कादियानी जो है वो ही मसीह माऊद है, वो ईसा अलैहि सलाम है। तो ये सरासर झूठ है, गलत है। मसीह वो कैसे हो सकता है जबकि वो पैदा हुआ है घर में, ईसा अलैहि सलाम तो पैदा हो चुके, वो तो उतरेंगे सिर्फ, और वो मर चुका, और ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे तो वो अपने ही नबुवत का नहीं दावा करेंगे, वो तो ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के तहत वो आएंगे, यानी वो ऐसा नहीं कि वो एक और नबी हो गए, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबुवत का दावा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। और वो ही आके दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, उन्हीं के वक्त में फिर याजूज और माजूज भी आएंगे, और उन्हीं की दुआओं से फिर याजूज और माजूज भी मरेंगे। فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ। तो रहे वो लोग, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो मैं उनको अजाब दूंगा, अजाब सख्त, जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम की जान लेने की कोशिश की, उनका इनकार किया, तो वो काफिर है। तो आप देखें, अजाबन शदीदन फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कैसे दुनिया में अजाब आया यहूदियों के ऊपर कि उसके बाद से ये कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सके थे, अभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी वो भी सिर्फ एक कयामत की निशानियों में से निशानी है, क्योंकि उन्होंने दज्जाल का साथ देना है। लेकिन अदरवाइज उस वक्त से इनकी जिल्लत ही चल रही है, और हिटलर ने कैसे इनको कत्ल किया, मिलियंस को कत्ल कर दिया, ममा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई मददगार नहीं होगा और आखिरत में भी नहीं होगा जो इस तरह से इनकार करेंगे। अल्लाह के नबी को कत्ल करना, ये सबसे बड़ा अजाब उस बंदे को होगा क़यामत के दिन जिसने उनको कत्ल किया, और इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा पूरा कोशिश कर ली थी ना, अपनी तरफ से तो उन्होंने कत्ल कर ही दिया था। वह अम्मल लदीना आमनु आमिलु सोलेहात, वो जो इन पर ईमान लाए और अमले साले करे। ईमान कैसा ईमान? वो ही ईमान ना जो सही ईमान है। ये थोड़ी के ईमान लाने का मतलब यह है कि ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा ही बना ले, वो तो सही ईमान ही नहीं है। तो जो सही ईमान लेकर आएगा इनके ऊपर, जो वाकई उनको अल्लाह का रसूल ही मानेगा और अमले साले करे, फयुवफ्फीहिम उजूरहुम, तो वो पूरा पूरा देगा उनको उनका अजर, यानी उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। जो ईसा अलैहि सलाम को भी माने और जो उस वक्त के हवारी थे या जिन्होंने उसके बाद भी उनकी तालीमात को सही से माना, वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को से मोहब्बत नहीं रखता। और जालिम यहाँ पे कौन है? जुल्म का मतलब क्या होता है? किसी हकदार को उसका हक ना देना, यानी किसी का हक मार लेना, और सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए। और जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम को खुदा माना या जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम की जान लेने की कोशिश की, उन्होंने भी जुल्म किया। ये जुल्म है, अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। और वो जो जालिम, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं रखता। इसलिए कभी इंसान जुल्म में अपने आप को मुलव्विस ना करे, हकदारों को उनका हक दे, किसी का हक ना मारे। वरना जालिम सिर्फ यही नहीं, जुल्म बहुत किस्म के होते हैं। शिर्क तो सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है शिर्क, क्योंकि अल्लाह का ही हक लेके तो किसी और को दे दिया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से जुल्म है, ये भी जुल्म है, एक रसूल को कत्ल करने की साजिश, और भी बहुत से जुल्म है। हम अपना नाम कभी जालिमों में ना लिखवाए, अल्लाह ना जुल्म करने वाला बनाना ना जुल्म सहने वाला बनाना। ये भी दुआ है, मसनून दुआओं में से एक, ज़ालिका नतलूहु अलैका, ये हम पढ़ के सुना रहे हैं। अलैका का की जमीर किस तरफ जा रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुना रहे हैं, मिनल आयात, आयात में से, वह जिक्र हकीम, और जिक्र में से हिकमत वाले, यानी कुरान में से ये आपको आयतें सुनाई जा रही है, यानी अल्लाह की तरफ से वही है जो आपको दी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें तो नहीं मालूम थी। तो ये है कुरान जो ये गैब की बातें बता रहा है। अब आप देख लें कि नजरान का वफद ये बातें सुन रहा है और इसके बाद क्या रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन उनका क्या रिएक्शन हुआ? जो आयात है ना, उसी की कंटिन्यूएशन है, मगर थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से आप इसको समझेंगे। एक तो दावत कैसे देनी है, खास तौर पे अहले किताब को, ये हमें समझ आएगी, और तौहीद की हमें समझ आएगी कि तौहीद क्या होती है। ठीक है, तो एक दावती अंदाज है इसमें। और ये याद रखिएगा कि ईसा अलैहि सलाम के जो ईसाई उनको उनके बारे में अकीदा रखते थे, वो अकीदा कितना बोगस था और वो किस तरह से उनको उनके शिर्क का रद्द किया गया, वो यहाँ पे बताया गया है। आप देखते हैं कि इन्होंने ईसा अलैहि सलाम के बारे में तरह तरह की बातें निकाल ली। वो हवारी तो सही दीन पे थे, लेकिन बाद में एक बादशाह आया और उस बादशाह ने इनके दीन में ये सारी जो आज आप देख रहे हैं ना चीजें, खिंजीर का खाना, सूद, और यही शिर्क, सबसे पहली तो शिर्क की बात है, ये सब चीजें उसने शुरू कराई थी। बाद जगह पे इसका रीजन ये दिया गया है कि वो बादशाह जो था वो एक एजेंडे के थ्रू आया था इस दीन में, और उसने चाहा था कि वो इस दीन के अंदर खराबी पैदा करे। अब उसने एक सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई। उसी ने ये जो आप देखते हैं गिरजों में, इनमें आप तस्वीरें देखते हैं या स्टैचूज देखते हैं या ये चीजें देखते हैं, ये उसने शुरू कराई। उसी ने ये सुअर को हलाल किया और उसी ने इनके सारे दीन की शक्ल बिगाड़ के रख दी। बाद जगह पे ये भी आता है कि एक बादशाह बाद में आया था, जब इन्होंने दीन फैलाने की कोशिश शुरू की, तो उस वक्त ये दीन दीन इस शरीयत मूसवी जो थी ये बड़ी लोगों को मुश्किल लगती थी। अब उन्होंने कहा जब हम दीन फैलाएंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग कहेंगे अच्छा हमें ये करना पड़ेगा। ये जैसे आज आप मसलन तबलीग के लिए जाते हैं, आप अगर कहते हैं आपको 5 नमाजें भी पढ़नी है, आप शराब भी नहीं पी सकते, आप किसी के आगे नहीं झुक सकते, आप किसी के ऊपर नहीं तवक्कल कर सकते, आप ये, तो वो दूसरा कहता है अच्छा इतने रोजे इतनी नमाजें हज भी है जक़ात भी देनी है फलां भी कर, ये तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने शरीयत जो मूसवी थी ना वो कहीं ज्यादा मुश्किल थी, उन्होंने कहा सारी को ट्विस्ट करो सब ठीक कर दो। तो उन्होंने सब चीजें जायज कर दी और इस तरह ईज हो गई उनके लिए, लेकिन सारे दीन का हुलिया बिगड़ गया। तो ये भी बाद वालों ने किया। तो इस तरह से इन्होंने जो आज आप दीन देखते हैं ना ये ऐसे नहीं था, अल्लाह की तरफ से तो जो सही दीन आया था उसके बाद ये चीजें शुरू हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें इनके अंदर आई, बड़ी सारी। फिर उन्होंने कानून ईजाद किए, जाहिर है जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर खुली छूट मिल जाती है, जो मर्जी आके आगे से आगे फिर करता रहता है। तो अब इनका जो एक आर्ग्यूमेंट था ना कि ईसा अलैहि सलाम को इन्होंने कहा कि वो खुदा का बेटा है, नऊज़ु बिल्लाह, या तीन में तीसरा है कि खुदा है एक, ईसा अलैहि एक, मरियम है, तो थर्ड वन वो है। अब खुदा को तो मान रहे हैं लेकिन साथ उसका बेटा बना दिया, या साथ उसको तीन में तीसरा कह दिया, या फादर सन और होली गोस्ट कह दिया इस तरह से। तो ये क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने कहा इनका बाप कोई नहीं है और इनका बाप वो ही है, क्योंकि ये मरियम के बेटे हैं तो बाप कहाँ गया। तो बाप फिर नऊज़ु बिल्लाह के उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला है। तो उनकी इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया गया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही कमसली आदम, बेशक मिसाल ईसा अलैहि सलाम की अल्लाह के नजदीक आदम की तरह। आदम को नहीं तुम देखते क्या? कैसे आदम की मिसाल है? आदम की मिसाल इस तरह है कि आदम अलैहि सलाम को देखें बगैर माँ और बाप के पैदा हुए, ना उनकी कोई माँ थी ना बाप था, तो वो भी तो पैदा हुए। अल्लाह ने जैसे उनको पैदा किया, खलकहुम मिन तुराबिन, उनको पैदा किया मट्टी से, सुम्मा काला लहू कुन फयकून, फिर उनसे कह दिया हो जा तो हो गए। तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो उसके लिए कुन कहता है, बस वो हो जाती है चीज। तो वो जीते जागते इंसान बन गए। अब एक अल्लाह के हुक्म के ऊपर, ना उनकी कोई माँ थी ना बाप था, कोई नहीं था, वो चलते फिरते उठते बैठते देखने वाले एक इंसान बने। तो ईसा अलैहि सलाम की तो माँ थी, एक जुज़ ही मिसिंग है ना, उनके तो दोनों ही मिसिंग थे। तो क्या उनसे फिर तो उनको कहना चाहिए कि वो नाउज़ बिल्ला को खुदा के बेटे हैं, उनको तो मानते हो, लेकिन ईसा अलैहि सलाम पे आने पे क्या हो जाता है? लेकिन बहुत ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है और ये बातें आपको अजबर याद होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पे वो लोग जो उन मुल्कों में रहते हैं जहां पे क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस की जाती है, अगर आपको ये बातें ही नहीं पता है ना तो फिर आप ना जवाब से हो जाते हैं कि अभी इसका क्या जवाब दिया जाए। आपके सिर्फ नो कहने से कि नहीं ये तुम्हारा गलत अकीदा है, ये बात नहीं बनती जब तक लॉजिक ना हो। अब देखिए इसमें कितनी जबरदस्त लॉजिक है कि ये बताओ कि तुम ये कैसे फिर कह सकते हो। तो ये बड़ी जबरदस्त तरीके से उनकी इस अकीदे को निगेट किया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को देख लो वैसी पैदाइश इनकी है और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसे पैदा करना किसी को। देखिए उसने बिन माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बिन माँ के हव्वा को पैदा किया, हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी, तो एक तरह से उनकी माँ नहीं है लेकिन उनका एक जुज है। और फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम बिन माँ बाप के और बाकी सारे इंसान माँ बाप के साथ, तो हर तरह से अल्लाह ने पैदा करके दिखा दिया कि कोई चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं है। अल्हक्कु मिन रब्बिका, हक तेरे रब की तरफ से है, यानी हक अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। जो हक की तलाश में है ना वो अल्लाह ताला से हक बात ले, और अल्लाह की तरफ से हक क्या है? ये कुरान, ये हक क्या है? ये सच है। अब नजरान का वक्फ सोचे ये बातें सुन रहा है, ये बात हक है, کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فَلَا تَكُن, تو سنگلر ہے, تم نہ ہو جانا. تو دیکھنے کو تو ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور ان سے ہی کہا جا رہا ہے, لیکن سنایا باقی سب کو جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والے نہیں تھے, لیکن باقی دنیا کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں تم اس مغالطے میں نہ پڑ جانا. کیونکہ تو بڑے آرگیومنٹس دیتے تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. آپ کے پاس حق ہے, اور جو حق لینا چاہتا ہے وہ اللہ سے حق لے, کیونکہ سچائی اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں کی سوچ, ان کے نظریات, ان کی جو باتیں ہیں, ان سے انفلوئنس نہ ہو جائیں. ان سے انفلوئنس ہوں گے تو بھٹک جائیں گے. اب وہ پتا ہے یہ لوگ بہت طریقے کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں کرسچنز, اور بعض دفعہ ایسے مسلمان جو کہ اتنے ہی کچے ہوتے ہیں کہ بس ان کو نہ اپنے دین کا کچھ پتا ہوتا نہ کچھ, وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ان کا انداز جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا ہی زبردست قسم کا, بڑا پیار محبت سے اور بڑے طریقے سے. آرگیومنٹ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ٹھوس بات کچھ نہیں ہے. ان کا تو دیکھیں بیس لیس ہو گیا نا, جس چیز کے اوپر ان کے دین کی عمارت کھڑی بھی ہے کہ جیزس ہیں جو کہ وہ خدا کا بیٹا, اسی کے اوپر تو کھڑی بھی نا, وہ انہی کو پوجتے ہیں, انہی کے آگے سجدے کرتے ہیں, انہی کے سٹیچوز بنا بنا کے اس کے آگے دعائیں کرتے ہیں, انہی کے گن گاتے ہیں. تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی جب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے بیٹے ہو سکتے ہیں خدا کے, اور خدا کا بیٹا جب کہہ دیا تو پھر ساری چیزیں انہی سے منوانی ہیں, کیونکہ وہ مان گئے تو خدا مان گئے. دوسری چیز یہ کہ یہ سوچنے نا کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے سولی پہ چڑھ کے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے, اب قیامت کے دن ہماری کوئی پوچھ نہیں ہونی. انہوں نے ہمارے گناہوں کا بس, انہوں نے ان کا جو سولی چڑھنا تھا نا, وہ ہمارے گناہوں کا بس کفارہ ہو گیا. کوئی خدا کے بندو, کوئی لاجک, لاجک آگے بات آئے گی, عقل کرو عقل. دنیا میں بھی نہیں تم ایسا انصاف کرتے کہ گناہ کسی نے کیا ہو اور پکڑ لو تم کسی انسینٹ کو. تم مانتے ہو نا وہ انسینٹ, تم مانتے ہو کہ وہ نیک روح تھے, تم مانتے ہو کہ وہ پاک تھے. تو یہ کیسی بوگس بات ہے کہ وہ جو ایک پاک ہستی ہے وہ سارے گناہ گاروں کا اپنے اوپر لے اور وہ تکلیف اٹھائے سب کی. اور کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم سورہ مائدہ میں جس طرح سے پڑھیں گے نا, جیسے اللہ تعالیٰ اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہیں, میں نے نہیں کہا تھا. سبحانک تو پاک ہے, وہ تو کتنا گھبرا جائیں گے کہ میرے اوپر ان کی وجہ سے بات آ گئی. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں, یہ اللہ کو گالی دینا ہے, اس کی اولاد ٹھہرانا. فمن حاجک فیہ, تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے, یعنی اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے, ان کو سارے دلائل دے دیے گئے, ان کو بتا دیا گیا, لیکن اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو اب یہ مباہلے کی دعوت ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں نبت اہل کے اندر کہ یہ بد دعا کرنا, اور بد دعا میں کیا کہا جائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ. اب یہ یہاں پہ یہی کہا گیا, تو پھر اگر وہ جھگڑتے ہیں آپ سے, یعنی اب وہ پھر بھی نہیں سمجھتے بات کو, اس کے بعد کہ جاءک من العلم, آپ کے پاس تو علم آ گیا, آپ کو تو پتا ہے, آپ کو تو سمجھ ہے, پھر بھی یہ آپ سے جھگڑتے ہیں کس بارے میں؟ فی ہی, اس کے بارے میں. کس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں, فقل, کہہ دیجئے, تعالو, آ جاؤ, پھر ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ونساءنا و نساءکم, اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تمہاری عورتوں کو, انفسنا و انفسکم, ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل, پھر ٹھیک ہے, ہم ایک کھلے میدان میں نکلتے ہیں اور ہم بد دعا کرتے ہیں. کیا بد دعا؟ فنجعل لعنت اللہ الکاذبین, پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. दोनों फरीक कहें कि जो झूठा है अल्लाह की लानत हो उसके पर। अब आप खुद सोचें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफद को ये कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से अभी आ गई बात, तो चलो अब हम मैं अपनी फैमिली को लेकर आता हूँ, आप अपनी फैमिली को लेकर आओ और हम जाके खुले मैदान में, और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मुबाहला करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर बद्दुआए कलिमात कहते हैं। तो वो तो समझ गए और वो इससे दस्तबरदार होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जरा डिटेल देखते हैं। एक जगह पे आता है इब्ने कसीर ने कि ये वफद मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद नबी में हाजिर हुआ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, असर की नमाज से फारिग होकर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। ये लोग नफीस पोशाकें पहन के आए हुए थे, खूबसूरत नरम चादरें ओढ़े हुए थे, मारे बड़े मालदार थे। ऐसा मालूम होता था जैसे बनू हारिस बिन काब के खानदान के लोग। सहाबा कहते हैं इनके बाद इन जैसा शान शौकत वाला वफद कोई नहीं आया। ये 9 हिजरी की बात है। इनकी नमाज का वक्त आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह करके मस्जिद नबी में अपने तरीके पर नमाज अदा की। बाद नमाज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी गुफ्तगू हुई। अब हम तो अपनी मस्जिद में आने ही नहीं देते किसी क्रिश्चियन को, अगर आ जाए तो बड़ा माइंड करते हैं कि ये क्यों आए हैं, चाहे वो खुतबा सुनने आए हैं चाहे वो नमाज में आए। हालांकि देखें वो मस्जिद नबी में आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने बातचीत की। अच्छा, अब ये बातचीत जब कर चुके तो आपने फरमाया तुम मुसलमान हो जाओ। उनने कहा हम तो पहले ही मुसलमान हैं। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो कहते हम तो पहले से ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। फरमाया नहीं, तुम्हारा ये इस्लाम नहीं है कि तुम अल्लाह की औलाद मानते हो, ये इस्लाम थोड़ी है, सलीब की पूजा करते हो, खंजीर खाते हो। उन्होंने कहा अच्छा, फिर ये बताएं ईसा का बाप कौन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और सूरह आले इमरान की शुरू से लेके ये देखें सारी आयतें आई। फिर ये आयत मुबाहला की आई, सब तिलावत करके उनको समझा दिया। फिर उसके बाद मुबाहले की आयत को पढ़ के आपने फरमाया अगर तुम नहीं मानते फिर भी तो आओ मुबाहला कर लो, निकलो फिर मेरे साथ। ये सुन के वो कहने लगे अबुल कासिम हमें मोहलत दीजिए कि हम आपस में मशवरा कर लें, फिर आपको जवाब देंगे। अब तन्हाई में बैठ के उन्होंने एक उनका जो बड़ा था ना आकिब उसका नाम था, उससे मशवरा किया। बड़ा वो दाना था, बड़ा अकलमंद समझा जाता था। उसने अपना हतमी फैसला इन अल्फाज में सुनाया कि ए जमात नसारा, तुमने यकीन के साथ इतना तो मालूम कर लिया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और ये भी तुम जानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत वही है जो ये तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जो कौम नबी के साथ मुलायना करती है यानी ये लानत भेजने का काम, ना उनके बड़े बाकी रहते हैं ना छोटे, सब के सब जड़ से उखेड़ फेंक दिए जाते हैं। याद रखो अगर तुमने मोबाइले के लिए कदम बढ़ाया तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। बस या तो तुम इनका दीन कबूल कर लो, और अगर किसी तरह नहीं मानना चाहते अपने दीन पे और ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अपने ही ख्यालात पे कायम रहना चाहते तो इनसे सुलह कर लो और वापस चलो। तो जब इन्होंने ये मशवरा कर लिया था फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अबुल कासिम हम आपसे मुलायना करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने दीन पे रहें हम अपने ख्याल और आप पे रहते, लेकिन आप हमारे साथ अपने सहाबा में से किसी एक आदमी को भेज दें जिनसे आप खुश हैं और जो हमारे माली झगड़ों में हमारे फैसला कर दें। तो क्योंकि आप हमारी नजरों में बड़े पसंदीदा लोग हैं। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खतूत भेजे थे ना तो इनकी तरफ भी खत भेजे थे। तो फिर उसके बाद इन्होंने मशवरा करके ये आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। तो इन्होंने उस तरह से मुखालफत नहीं की थी क्योंकि इनको बड़ी अच्छी तरह पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। लेकिन क्यों नहीं मानते थे फिर, क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? जाहिर है इनके बड़े उलमा पादरियों के पीछे लोग चलते हैं, बाकी लोगों की तो अपनी कोई इतनी अकल नहीं होती। लोग जो है ना कलाना आम होते हैं, आम लोग जो होते हैं बस उन मवेशियों की तरह होते हैं, बस एक आगे चल पड़ा तो उसके पीछे चल पड़ा। तो इन्होंने इस वजह से इनके उलमा ने नहीं माना, और सारा आज का लेसन इसी पे है क्यों नहीं तुम मानते, क्यों नहीं तुम मानते, तो वजह यही थी। हमारे अपना फिर क्या रहेगा, हम इनके अंडर आ जाए। आज हम इतने इतने हमारे ओहदे हैं, लोग हमें पूछते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमें सारा कुछ छोड़ के हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। एक उम्मती एक आम उम्मती होंगे फिर, वो जो बड़े मकाम मिले हमें, मिसाल के तौर पे जैसे आपके यहाँ हरम के इमाम हो, कितना बड़ा उनका मकाम है ना, इसी तरह इनकी ईसाइत में वो बहुत बड़े थे। उनको छोड़ के अब ये सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाएंगे और हम एक आम से मुसलमान बन जाएंगे, ये क्या बात हुई। तो बहुत दफा ऐसा होता है, इसी तरह उसके साथ भी हुआ था जो रोम का बादशाह था, कैसर रोम, वो समझ गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत से और अबू सुफियान की बातों से कि ये सच्चे नबी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसने कहा अगर मैंने इनको मान लिया मेरे तो ये मुखालिफ हो जाएंगे, मुझे स्टेप डाउन करना पड़ेगा अपनी बादशाह से। दिल में वो मान गया हुआ था। तो कभी ये ओहदे, कभी ये पोजीशंस, कभी पावर, कभी अपने आप को मनवाना, ये चीजें होती हैं जो इंसान को हक से फेर देती हैं। और यही चीजें आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि वो क्यों अल्लाह के दीन को सही प्रैक्टिस नहीं करते। मेरी पोजीशन चली जाएगी, मेरी पावर मुझसे छूट जाएगी, मैं क्या मानी जाऊंगी लोगों में, मेरा क्या स्टेटस रहेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज लुक डाउन किया जाता है ना ऐसे लोगों को जो दीन पे चलने वाले। तो अपने आप को ऐसा रखो कि बड़े दुनियादार सा अपना आपको दिखाओ, बड़ा मॉडर्न सा दिखाओ, उसमें तुम्हारी इज्जत है। और उसमें तो असल सिक्योर किसको करना है फिर, अपने स्टेटस को, अपनी इज्जत को, ये इसमें इज्जत समझते हैं। फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीअ, मोमिन का तो एक बात को समझ लेना, इज्जत सारी अल्लाह के हाथ में है, कोई नहीं मुझे बेइज्जत कर सकता, कोई मेरे से कोई ओहदा, कोई स्टेटस, कोई इज्जत छीनना चाहे नहीं छीन सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन यही चीजें आज हमें भी इतनी, हम इनसे चिपके होते हैं ना कि हमें लगता है ये हमसे, हमारे हाथ से निकल जाएंगी। वो बोला कि हमारे पास कौन सी कोई पावर है, फिर भी हमारी हालत देखिए क्या होती, अगर ये कर लिया तो लोग कैसे देखेंगे मुझे, लोगों में मैं उतनी सराही नहीं जाऊंगी, अप्रिशिएट नहीं की जाऊंगी जैसे अब हूं मैं, जितने कम कपड़े पहनूंगी उतनी ज्यादा मैं अच्छी लगूंगी और लोग मुझे अप्रिशिएट किया करेंगे, उतनी मैं मानी जाऊंगी कोई चीज, उतनी मैं अप टू डेट नजर आऊंगी। ठीक है ना, छोटी मिसाल है आपके सामने। देखिए हमारी ये इतनी सी चीजें हैं जिसके पीछे हम लुटे चले जा रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ते हैं, है ना, कि बस वो मुझे जो क्या देखेंगे। तो आप मुझे बताएं, अपने आप को भी तो रख के देखा करें ना आयतों के तनाजुर में, और वो क्यों नहीं माने, उनके सामने हक आ गया था क्यों नहीं समझे, उनके पास तो भाई बहुत पावर थी, मेरे आपके पास क्या है, फिर भी हमारे पास जितना है ना उसके साथ ही चिपटे में, इतनी पावर आ जाती तो फिर पता नहीं क्या करते। इसलिए किसी ने कहा ना कि फिरौन, उसको बुरा भला तो बहुत कहते हैं, बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे हैं कि उनको फिरौन जितनी पावर मिल जाती तो वही करते जो फिरौन ने किया, बुरा वो तो बहुत कह रहे हैं हम, मुलानते तो उसके ऊपर बड़ा भेजती, लेकिन करते वही। और इसी तरह इनके शूज में आके देखें, हम तो वो बड़े माने जाते थे, आप समझे। अब जैसे मैं आपको बताया इमाम काबा हो जैसे कोई, तो उस तरह से इनकी पोजीशन, पावर, आगे पीछे लोग इनको समझते हैं बड़ी चीज, उनको नवाजते हैं, उनकी एक पावरफुल पोजीशन है, बादशाह तक इनको जो है ना रिगार्ड करता है, तो क्या रह जाएगा हमारे पल्ले, कुछ भी नहीं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के उधर चल पड़े और जाके एक आम से आदमी बन जाए। तो समझे समझे कि ये कितने बड़े फितने बन जाते हैं, ये माल, ये पोजीशन, ये स्टेटसेस, ये लोगों का आपको आगे पीछे होना, ये कितने बड़े फितने बन जाते हैं बार दफा, ये लोगों की तारीफें, ये लोगों का आपको कुछ समझना कि ये वाह भाई क्या बात है तुम्हारी, ये इतने बड़े फितने बन जाते हैं ना कि ये इंसान को हक मानने से दूर कर देते हैं। तो इंसान को ना वो थ्रेटन फील करता है कि अगर मैंने ये ये छोड़ के मैं किसी और तरफ गई ना, तो ये सारा कुछ मुझसे छूट जाएगा, सब चीज मुझसे चली जाएगी। सेम बेटा, कोई अनोखी बात नहीं मैं आपको सुना रही। अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हैं बहुत, तो हमारे हाल कुछ अच्छे नहीं है वरना। तो जब उन्होंने, अच्छा वो करते क्या ना करते, वो तो अब फंस गए कि एक तरफ मोबाइल का हमें कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हमें हम क्या करें, हमने ये भी नहीं छोड़ना सारा कुछ। तो उनके पास एक ही सिर्फ रास्ता था कि मोबाइल ना करें, ओके हम अपने पे रहते हैं, हम अपने पे रहें, लेकिन ठीक है हम आपको जिजिया देते रहेंगे, हम आप वो आगे बात आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहदनामा इनके लिए लिख के दे दिया था। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या कि तो उस आदमी ने कहा कि हम अपने, हाँ इन्होंने अगले दिन जाके कहा कि आप अपने सहाबा में से हमारे साथ किसी को भेज दें जो आपकी नजरों में बड़ा पसंदीदा हो, तो वो हमारे दरमियान फैसले करते, क्योंकि आप लोग हमारी नजरों में बहुत पसंदीदा हैं, तो जिससे आप खुश हैं ना उसको भेज दें हमारे साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम दोपहर को आ जाना कल, तो मैं तुम्हारे साथ किसी अमानतदार को भेज दूंगा, मजबूत अमानतदार को। हजरत उमर फरमाते मैंने किसी दिन भी सरदार बनने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन उस दिन सिर्फ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की ना कि मैं कोई मजबूत इमानतदार होगा जो तुम्हारे साथ भेजूंगा, तो जिसकी आपने तारीफ कर दी हो कि वो ऐसा होगा, उस दिन हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सेलेक्ट कर दें, ओहदे के लिए नहीं, कि इतनी बड़ी उसकी गवाही आपने दे दी। कहते हैं उस दिन मैं जल्दी जाके जोहर की नमाज के लिए पहुंच गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज जोहर पढ़ाई, फिर दाएं बाएं नजरें दौड़ाने लगे, मैं बार बार अपनी जगह ऊंची होता जाता था ताकि आपकी निगाहें मुझ पर पड़ जाएं, लेकिन आप इधर उधर देखते रहे, यहां तक कि आपकी निगाहें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह उन पे पड़ी, उनको बुलाया और उनके साथ रवाना किया कि जाएं आप जाके इनके खिलाफ आपका फैसला करें। इसीलिए अबू उबैदा बिन जर्राह को अमीन कहा जाता है, अमानतदार कहा जाता है सुम्मत का। तो जहां तक मुबाहले की बात रह गई, तो फिर जब इनको दावत दी थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन अपनी फैमिली को लेकर, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अली, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन सबको लेकर निकले थे, लेकिन वो लोग नहीं आए। और जिन्होंने ये जो जो ये वफद आया हुआ था, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहले के लिए निकलते तो वापस खैरियत से ना पहुंच सकते। ठीक है, एक इब्ने मुर्दवे में रिवायत आती है कि उनके जो बड़े थे दो लोग आके बरतिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने उनको मुबाहले के लिए कहा, और सुबह को हज़रत अली और फातिमा और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को लेके आप तशरीफ लाए और इन्हें कहला भेजा, उन्होंने कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा हम आपको खराज दे देंगे। तो फिर आपने अहदनामा लिख दिया था कि हर साल आप इतना इतना दिया करेंगे, और आपने फरमाया उस रात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, अगर ये दोनों कहते कि नहीं हमने नहीं ना मुबाला करना है तो ना हमने जिजिया देना है, तो इन पर यही वादी आग बरसाती। ठीक है, तो ये छोटी बात नहीं होती। आज भी मुबाहला तो हो सकता है, मगर ऐसे नहीं है कि आप किसी भी बात के ऊपर खड़े होकर दूसरे को कहते नहीं नहीं अब हमने आपको तो बता दिया बस आए आप मुबाहला के लिए, नहीं ऐसे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ ये एक वन टाइम किया है, ये आयत मुबाहला कहलाती है, आपने एक दफा सिर्फ किया जिंदगी में, और वो भी इस टाइम पे आके जिस वक्त के बिल्कुल सब कुछ वाजे हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जिद पे अड़े हुए थे। तो बार बार नहीं हर आए दिन के मुबाला करें या दो चार बातें बता के मुबाले के लिए बुला लें। इन्ना हादा लहु अल-क़ससुल हक, बेशक ये अलबत्ता वो किस्से हैं सच्चे। ये जो सारी बातें आई हैं ना چاہے وہ حضرت مریم کی پیدائش کی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر یہ ساری باتیں، سب سچی باتیں، یہ سب سچ ہے، یہ حقیقت ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی قابل عبادت ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور یہ بات حق اور سچ ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ حق اور سچ ہے، ان میں بال برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ وہی ہے غلبے والا، عزت والا اور حکمت والا. تو وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اتھارٹی اس کے پاس ہے، پاور اس کے پاس ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ مو موڑ جائیں اور پھر بھی یہ باتیں نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ فسادی کون ہے. فسادی کس کو یہاں پہ کہا گیا؟ آپ کو پتا ہے نا، شرک تو سب سے بڑا فساد ہے. اور یہ لوگ جو ان کے بڑے تھے، جو آئے تھے اتنی شان و شوکت کے ساتھ، جن کے پاس یہ پاور تھی، لوگ ان کی بات سنتے تھے. جو یہ کہہ دیتے تھے نا، لوگ سنتے تھے، لوگ کہتے ہمیں منظور ہے. اگر سوچیں، یہ نہیں مانتے، یہ شرک پہ اڑے رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ سب لوگ ان کے پیچھے ہی چلنے تھے. اور انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ ہم شرک پہ رہیں گے، جس سے کتنا بڑا فساد ہے جو کہ کریٹ ہوا. کہ جتنے فالوورز تھے ان کے، وہ سب پہ شرک پہ قائم رہے. یہ کتنا بڑا فساد ہے، کیونکہ جب ان کے پاس پاور ہے، یہ نہیں مانیں گے تو لوگ بھی نہیں مانیں گے. اگر یہ مان جاتے تو سب لوگ مان جاتے. تو ٹاپ پہ کون ہوئے؟ یہ ہیں جو کہ منہ پھیرنے والے سب سے پہلے. اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں، تو ان کا منہ موڑ جانا صرف ان کے اپنے خسارے کا باعث نہیں ہے. بعض لوگ اتنے انفلوئنشل ہوتے ہیں، اتنے ان کی سے ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اتنے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کہ اگر وہ کسی طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں، لوگ ویسے ڈریس اپ ہوتے ہیں، وہ جیسے بال بناتے ہیں، لوگ ویسے بال بناتے ہیں، وہ جس طریقے سے چلتے ہیں، لوگ ویسے چلتے ہیں، اور وہ جو دین اپنا لیتے ہیں، لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا دنیا میں. تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی تھا. یہ ہے فساد، پھر یہ اصلاح نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن